ओम शांति। हम सभी ने आज बाबा की विशेष बताई हुई ड्रिल का अभ्यास इस इंटरनेशनल योग में किया होगा। सवेरे अव्यक्त बाप दादा की मुरली में अति और अंत की ड्रिल विस्तार में आते सार स्वरूप में स्थित हो जाएं, कितना भी आवाज में आए आवाज से परे चले जाएं, कितना भी रमणीकता में आए सेकंड में गंभीरता में चले जाएं, अति और अंत की ड्रिल बाबा ने आज हम सबको सिखाई। साकार बाबा का मिसाल हम सब ने बाबा के महावाक्यों में सुना, लेकिन इस लास्ट ग्रुप में जब हम सभी बाबा से मिल रहे थे, बाबा के प्यार के सागर की लहरों में सभी खोए हुए थे, बाबा ने उस ड्रिल को प्रैक्टिकल करके दिखाया। बहुत से लोगों के संकल्प चल गए कि अभी अभी बाबा इतना बच्चों के बीच में इतना रमणीकता से इतना प्यार लुटा रहे थे, और जब बच्चों ने गीत गाना शुरू किया तो बाबा को क्या जल्दी थी जो एक सेकंड में ऐसे किया और चला गया। देखा था दृश्य सभी ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा ऐसा आज बाबा ने क्यों किया। सभा में भी बहुतों के प्रश्न उठ गए होंगे, क्योंकि वैसे लास्ट समय जब लास्ट सीजन का दिन होता है तो बाबा के साथ बहुत मीठी मीठी रूह रियान होती है। विदाई देने के समय सभी भाई बहनें गीत गाते हैं, कुछ न कुछ बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन ये पहला अवसर हमने देखा 40-42 साल के अव्यक्त पार्ट में, पहला ही ऐसा दिन था जो बाबा दृष्टि देते देते एक सेकंड में फट से चले गए, न्यारे बन गए। क्या ट्रेनिंग दे करके गए, विस्तार में आते सब कुछ करते सेवाओं में आते एक सेकंड में अपने आप को अलग कर लो, इतनी जल्दी सब कुछ समेट लो, एक सेकंड भी नहीं लगा। बाबा को तो देखा सभी ने, सेकंड भी नहीं लगा, और जब तक सोचने लगे सामने बैठे तब तक गुलजार दादी भी आ गई। तो इस बार का पार्ट हम सबको क्या सिखाता है। ऐसे अचानक ही बाबा कहता है सबको उड़ना है, देह से डिटैच हो जाना है, इतनी न्यारी और प्यारी स्थिति बाबा ने कैसे अपनी बनाई, ब्रह्मा बाबा ने। हम बच्चों को तो सिर्फ कहते हैं फॉलो करो, तो हम अपने कार्य व्यवहार में आते कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बीच बीच में ये ड्रिल अवश्य करें, अभी अभी आवाज में आए और अभी अभी आवाज से अलग हो गए, अभी भी कोई बातों के विस्तार में आए। हम परसों दादी जी के साथ गुलजार दादी के साथ बैठे थे, तीन चार भाई थे, बहुत सी बातें चल रही थी और दादी सबसे मिलते दृष्टि देते बोलने लगी, एक सेकंड में सभी बाबा के पास चलो, पांच मिनट ड्रिल करते हैं। सब सन्नाटा हो गया तो दादियों का ध्यान विशेष इस ड्रिल पर है। जानकी दादी के पास भी कोई ग्रुप को मिलाने जाओ। इस बार एक ग्रुप को मैं लेकर के गया, बहुत जल्दी थी दादी को मीटिंग में जाना था, तो दादी एक मिनट मिल लो, और मैं जल्दी जल्दी कर रहा था तो जब ग्रुप सामने बैठा तो दादी कहते एक सेकंड साइलेंस, जल्दी नहीं किया, और एक सेकंड साइलेंस कह करके मैं समझता हूँ तीन मिनट तक उनको दृष्टि दी थी। जल्दी कार्य बहुत थे, जाना मीटिंग में था, लेकिन कितना अटेंशन है, खुद भी शरीरी स्थिति का अनुभव करें और सामने वाली आत्माओं को भी वो ड्रिल कराएं। ये दादियां बाबा हम सबको विशेष इशारा दे रहे हैं कि अब ऐसी नाजुक परिस्थितियों के बीच में इस शरीरी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाओ। यही अभ्यास कर्मेंद्रिय जीत बनाएगा, विक्रमाजीत बनाएगा, और इसी अभ्यास से कर्मातीत स्थिति को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ आप सभी इस ड्रिल को बार बार करते होंगे। इस सीजन में बाबा ने हम सबको बहुत सार रूप में बहुत गहरी गहरी बातें सुनाई हैं। मुरली सार रूप में है, लेकिन उसका भी जब सार में बनाने लगा तो ऐसे लगा कि बाबा ने केवल 8-10 बातों में सभी मुरलियों को समाया हुआ है। ध्यान पर आप सबके होंगी, 2-3 मुरलियों में विशेष इशारा दिया, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाबा अनेक जुम्मेवारियां संभालते हुए बिल्कुल बेगमपुर के बादशाह बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहे, जुम्मेवारियों को छोड़ा नहीं, इतनी परिस्थितियां इतने पेपर्स के बीच में सब कुछ संभालते हुए न्यारे और प्यारे रहे और बिल्कुल बेफिक्र बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहे। तो 2-3 मुरलियों में बाबा ने इस बात को अंडरलाइन किया कि ऐसी बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करो। चेक करते हैं सभी, कईयों के सिर पर बहुत सी जवाबदारियां रहती हैं, बहुत सी सेवाएं हैं, बहुत से बच्चे बाबा के बढ़ते जा रहे हैं, सेवाओं का अति विस्तार हो रहा है, और हम सब जानते हैं जब सेवाओं का विस्तार होता है तो नई नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। कई बार वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो फिक्रात कर दें, चिंता कर दें, बीपी बढ़ा दें, नींद फिटा दें। ऐसे वातावरण में भी इतना अटूट बाबा के ज्ञान में ड्रामा में विश्वास है कि हर बात में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, और जो कल्याण की बिंदी लगाना जानते हैं वो बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं। नहीं तो कई ऐसी परिस्थितियां ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जो हिल जाते हैं, तुरंत हलचल में आ जाते हैं, क्यों क्या कैसे की उलझन में उलझ जाते हैं, और बाबा जो चाहता है कि मेरे बच्चे खुश किस्मत हैं, खुश मिजाज हैं, खुश नसीब हैं। कितनी महिमा किया 2-3 मुरलियों में बाबा ने, बार बार इस बात को रिवाइज किया कि आप बच्चों जैसा खुश किस्मत कोई भी नहीं है, खुश नसीब कोई भी नहीं है। वो खुशनुमा स्थिति परिस्थितियों के बीच में क्या करती है, कभी कभी किसी के बात सुनना पड़ता है, फोन आते हैं, तो वो खुशनुमा स्थिति में इतनी हलचल दिखाई देती है जो उसी समय गंगा जमुना बह जाती है। इतना आंसू आ जाते हैं जो सामने वाले को भी रुला दें। ऐसे खुश किस्मत वाले बच्चे, खुश नसीब बच्चे, खुशनुमा बच्चे, कोई भी बात आती है बहुत धैर्यता के साथ, बहुत सरलता के साथ उस बात को समझते हुए सेकेंड में फुल स्टॉप लग सकता है। विचार करने की बात है, बड़ी बात आ गई, ऐसा पेपर आ गया, सोचा ही नहीं था, ऐसी बातें भी होंगी। लेकिन उन्हीं बातों के बीच में अगर हलचल में आ गए तो स्थिति क्या है, जो आज बाबा ने कहा मेरे बच्चों की स्थिति हाईएस्ट से हाईएस्ट होनी चाहिए। हाईएस्ट और होलीएस्ट की मुरली सुन रहे थे तो श्रेष्ठ पाठधारी, श्रेष्ठ बाप के साथ पाठ बजाने वाले, इतनी ऊंची श्रेष्ठ शान में रहने वाले, इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति में ब्राह्मण जीवन में रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं छोटी छोटी बातों में इतना लोएस्ट नीचे क्यों आ जाती है, विचार करने की बात है। इस पर सोचना है कि ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है, क्या ज्ञान को इतना मनन, इतना चिंतन, इतना इसके गहराई में गए हैं जिसके साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है, इतनी ऊंची ज्ञान की समझ दी है, उनके बच्चे छोटी छोटी बातों में हलचल में क्यों आए हैं, विचार करने की बात है। इस पर सोचना, इतनी होलीएस्ट आत्माएं हैं जिनके नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पैर कमल, कमल की संज्ञा से बाबा विभूषित करता है, इतनी हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं की शान कितनी ऊंची है, कितनी महान है वो। अपनी महानता को याद करके हम अगर उस श्रेष्ठ स्थितियों में रहते हैं तो बाबा जो हम सबसे चाहते हैं, खुशी बांटो और खुशी में रहो, खुशनुमा चेहरा हो, हर्षित मुक्ता आपके चेहरे से दिखाई दे, प्राप्ति संपन्न चेहरा हो, तो दो तीन मुरलियों में बाबा ने ये बात अंडरलाइन कराई है। तीसरी बात आपने ध्यान दी होगी, बाबा हम सबको हर बार समय को समीप लाने की विशेष प्रेरणाएं दे रहे हैं, और समय को समीप लाने के लिए ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। कैसे बाबा बने, इस बात को भी बाबा ने दो तीन मुरलियों में बार बार अंडरलाइन कराई और कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने कदम उठाए, उन्हीं कदमों पर कदम रखते हुए 10 पॉइंट्स रिवाइज कराई बाबा ने। याद होगा 2005 में ये पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स सभी के पास भेजी गई थी मधुबन से, और वही बात इस बार बाबा ने 10 कदम के रूप में रिवाइज की। उसको हमने 2-3 बार इंटरनेट पर भेजा है जिससे याद रहे कि ब्रह्मा बाबा के वो 10 कदम कौन से थे जिनको हम फॉलो करें और बाबा के समान संपन्न बनकर समय को समीप ले आए, समय से भी फास्ट पुरुषार्थ। जो आज बाबा ने कहा टीचर समय का इंतजार नहीं करती, समय से भी फास्ट गति का पुरुषार्थ हो, अब नहीं तो कब नहीं, बाबा की मुरली याद होगी। तो हम सब ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम रख करके, एक विशेष मुरली बाबा ने चलाई, मन जीत जगत जीत, ये मन मेरा है इसलिए इसको कैसे जीता जाए। पहले बाबा की मुरलियों में माया जीत जगत जीत बहुत आया है, मन को बच्चे क्या जीतेंगे, इसको जीता थोड़ी जाता है, ये तो साथी है सहयोगी है। लेकिन इस सीजन में 2-3 वर्षों से बाबा इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये मन बहुत तूफानी है, बहुत भटकाता है, बहुत प्रकार के संकल्प इसके अंदर आते हैं। आपने आज की मूली नोट की होगी, 76 में बाबा ने ट्रेनिंग दी थी जो आज भी वही अंडरलाइन करा रहा है। बहनों ने उत्तर में कहा क्या पुरुषार्थ करना है, तो कह दिया सतो प्रधान बनने का, संपन्न बनने का। बाबा ने कहा ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपका श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है। उसमें बाबा ने सिर्फ यही अंडरलाइन कराई, सेकंड भी व्यर्थ न जाए, समर्थ हो, हर संकल्प समर्थ हो। और इस सीजन में विशेष अंडरलाइन कराई, सब खजाने बच्चों के पास हैं लेकिन सबसे अमूल्य खजाना समय का है। इस समय के खजाने को व्यर्थ नहीं जाने देना। समय कैसे कैसे व्यर्थ जाता है, अगर कोई आत्मा एक छोटी सी भी सूक्ष्म अवज्ञा कर देती है, श्रीमत का उल्लंघन करती है, तो एक छोटी श्रीमत का उल्लंघन करने से कितना समय व्यर्थ जाता है। पहले तो वो समय जिस समय हमने उल्लंघन किया, कोई अवज्ञा की, कोई कर्म या बोल में आए, वो समय व्यर्थ गया। फिर उसके बाद जब महसूस हुआ तो उस महसूसता में समय गया। फिर जब उस महसूसता के बाद हमने उसका पश्चाताप किया तो पश्चाताप में समय गया। और पश्चाताप के बाद अगर उसको चेक करके चेंज करना चाहा तो चेंज करने में भी समय चला गया। एक छोटी सी भूल के पीछे ये अमूल्य समय कितना हमारा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए बाबा विशेष अंडरलाइन कराते हैं बच्चे, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, एक तराजू है तुम्हारे सामने ब्रह्मा बाबा की, जीवन कसौटी को हो तराजू को हो, तौल लो, सोच लो क्या ये संकल्प बाबा ने किया होगा, क्या ऐसा बोल बाबा ने बोला होगा, या कर्म जो मैं कर रहा हूँ ऐसा ब्रह्मा बाबा करेंगे, या हम आत्माओं को देख करके किसी न किसी कारण से, कोई आत्माओं पर जब नजर जाती है ये बड़े से हैं, ये महारथी हैं, ये भी ऐसे करते, ये भी ऐसे करते, ये भी ऐसे, कौन अभी संपन्न बना है, और कई तो ऐसा ऐसा जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, एक भाई कहने लगा भाई साहब 5 तो 8 ही होंगे, सबको ही सजा खानी पड़ेगी, जब 108 भी कुछ न कुछ सजाएं खाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए शायद हमसे तो कोई भूले होना निश्चित ही है, तब तो सजा मिलेगी। तो कई बार हम बाबा की मुरलियों की ऐसी बातें अपने लिए पुरुषार्थहीनता के लिए, इसको बाबा कहता अलबेलेपन की भाषा, अलबेलेपन में भी ऐसे शब्द न निकलें, हम सब रेस के घोड़े हैं, रेस कर रहे हैं, और सबके सामने मंजिल है संपन्नता और संपूर्णता की। इसलिए रेस के घोड़ों को दादी जानकी ने भी अभी लास्ट में यही क्लास में कहा था कि वो एक दूसरे को टक्कर नहीं लगाते हैं और इधर उधर भी नहीं देखते, क्योंकि उनको सबसे पहले पहुंचना है। तो रेस में हम सबको कोई को टक्कर भी नहीं लगानी है आगे बढ़ने के लिए, अपने रास्ते पर चलते हुए, और साइड सीन न देख करके, कोई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उनके हिसाब किताब, उनके संस्कार, उनके कर्म के खाते वो जाने, लेकिन मुझे अगर मंजिल पर पहुंचना है, सही दिशा में चलते हुए संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो कोई को भी देखना नहीं। और जब ऐसा लक्ष्य रख करके हम कोई गति से तीव्रता का पुरुषार्थ करते हैं और बाबा पुरुषार्थ भी कोई खास अंडरलाइन और कोई बातों का नहीं कराते हैं, केवल चार पांच बातें ध्यान पर रहें तो बहुत सहज एक सर्टिफिकेट जिसकी जरूरत है हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे आंतरिक प्रसन्नता के लिए, चाहे श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध के लिए, चाहे तपस्या के लिए, चाहे ब्राह्मण कुल की शान के लिए, एक ही सर्टिफिकेट हर ब्राह्मण आत्मा के पास होना चाहिए। कौन सा? संतुष्ट मणि का।